Hare Krishna. I'm a fortune to hear His Grace Rukmini Krishna Babaji on Srimad Bhagavatam, 4th Canto, 29th Chapter, verse number 83, on Sunday, 29th June, 2008, and the subject is Attaining Liberation Through Association of Devotees.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Hare Krishna. So, योगिनी एकादशी के तो प्रसंग चल रहा है कि प्रभुपाद जी अपने विदेशी शिष्यों के साथ भारत में आते हैं. प्रभुपाद भारत भूमि छोड़ गए थे 1965 में और वापस आए 1970 में अपने विदेशी शिष्यों के साथ. अब वो पहुंचे हैं कलकत्ता 1970 अगस्त कलकत्ता. और जब प्रभुपाद विदेशी शिष्यों के साथ भारत में आए तो बहुत रुचि उत्पन्न हुई कलकत्ता वासियों में कि ये कैसे लोग हैं. और खूब प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला कि रोज कीर्तन निकालो सड़कों पर. तो कीर्तन देखकर विदेशियों को नाचते हुए भगवान के प्रेम में पागल देखकर सबके सब जो वहां के बंगाल के निवासी थे अचंभे में पड़ गए. तो प्रभुपाद ने इनको नाम दिया नाचते सफेद हाथी, डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स, कि सबको अपने प्रति आकर्षित कर रहे थे. फिर प्रभुपाद ने सोचा क्योंकि जनसाधारण हमें गलत ना समझ लें कि ये लोग केवल नाचना गाना जानते हैं, इनको और कुछ नहीं आता. फिर प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला कि अब नाचना गाना हम बंद करेंगे. अब उन्होंने एक नए प्रचार की विधि सोची. वो चाहते थे कि उनके शिष्य इस धर्म प्रचार करें जिससे वे अधिक बुद्धिजीवी और सामान्य भारतीयों के निकट पहुंच सकें. तो उन्होंने अपनी निजी योजना प्रकट की. तो निजी योजना क्या थी, उन्होंने उसे आजीवन सदस्यता कहा, जैसे आप सब लाइफ मेंबरशिप कहते हैं. उनके शिष्य ऐसे भारतीयों को जो इस्कॉन के समर्थन में रुचि रखते थे और उससे संबंध होना चाहते थे सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित करते थे. आप में से कितने लोग लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम के बारे में जानते हैं? कितने लोग लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते? बिल्कुल. तो कृपया करके संपर्क करें इस ग्रेस केशवमारी प्रभु और हमारे अन्य भक्तों से, तो वो पूरी आपको जानकारी देंगे कि लाइफ मेंबरशिप का क्या अर्थ है. तो लाइफ मेंबरशिप बनाना शुरू किया प्रभुपाद जी ने. प्रभुपाद देखिए जीनियस हैं, कैसे भक्तों को जनसाधारण को सेवा में जोड़ना है. तो उस समय लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी शुरू की थी उन्होंने, 1970 में शुरू हुआ था ये प्रोग्राम. ये उस समय फीस थी 1111 रुपए. 1111 रुपए की सदस्यता प्राप्त करने से कोई व्यक्ति अनेक लाभ पाने का अधिकारी हो जाता था, जैसा श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों की प्राप्ति और संसार भर में इस्कॉन के केंद्रों में निशुल्क आवास. 1111 रुपए दो प्रभुपाद की पुस्तकें मिलती थी. और विश्व में जितने भी इस्कॉन के केंद्र थे उस समय और अब भी वो लाइफ मेंबर है 1970 का बना हुआ, उसको अभी भी ये सुविधाएं मिलेंगी कि विश्व के किसी भी केंद्र में वो चला जाएगा उसको निःशुल्क आवास मिलेगा. एक दिन संध्या समय किसी के निजी धन घर पर धनी व्यवसायिकों के एक दल के सामने बोलते हुए प्रभुपाद ने आजीवन सदस्यता की अपनी योजना आरंभ की. व्याख्यान के बाद उन्होंने श्रोताओं को इस्कॉन के आजीवन सदस्य बनने को आमंत्रित किया और कलकत्ता के कई व्यापारियों ने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए. तो तुरंत सक्सेस मिल गई. तो एक व्यापारी है बीएल जाजू, वो बता रहे हैं अपना व्यक्तिगत अनुभव. मैं प्रभुपाद के सरल स्वभाव से वास्तव में अभिभूत था. उन्होंने मुझे बताया कि वे किस प्रकार अपना नियमित धंधा चला रहे थे, जबकि उनके गुरु ने उनसे कहा कि 400 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन समस्त संसार में व्याप्त होगा. उन्होंने बताया कि यही कार्य था जो उनके गुरु महाराज ने उन्हें सौंपा था और उसके लिए उन्हें अमेरिका जाना होगा और उसे करना होगा. मैंने उनमें कोई दंभ नहीं पाया, वे बहुत सरल थे. वे मुझे इस तरह बता रहे थे मानो मेरे भाई मुझसे बता रहे हों कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका कैसे गए, उन्होंने कैसे कार्य आरंभ किया और किस प्रकार धीरे धीरे कृष्णा भारत का प्रसार सारे संसार में करने के लिए उन्होंने योजना बनाई. उन शिष्यों को जिन्होंने अपना जीवन दल बदल दिया है देखकर मैं सोचने लगा, मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता। अपने विनम्र ढंग से मुझे कुछ करना चाहिए बिना इस बात की चिंता किए हुए कि अन्य लोग क्या करते हैं। मैंने पाया कि अप्रत्यक्ष ढंग से मेरे जीवन को प्रभावित कर रहे थे। मेरी पत्नी और मेरे पुत्र सचमुच आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने देखा कि ये श्वेत लोग, जिनके बारे में मैं सोचते थे कि ये कभी भी कृष्णा भावनामृत की ओर उन्मुख नहीं होंगे, इतने अधिक बदल गए थे। इसलिए हमने सोचा कि हमें भी गीता के उपदेश का अच्छी तरह अनुगमन करना चाहिए। कितनी अच्छी बात है, हमें मालूम चलता है इससे कि अगर हम भी प्रचार करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आचरण को सुधारना होगा। केवल अपने आचरण के द्वारा हम किसी को प्रभावित कर सकते हैं। प्रभुपाद इस व्यापारी से मिल रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे बड़े भाई हों, और इतने सरल स्वभाव के थे। प्रभुपाद की उनको सबसे अच्छा गुण लगा कि कितने सरल हैं। तो भक्त का अर्थ है बिल्कुल सरल, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई तिकड़मबाजी नहीं, कोई राजनीति नहीं, सरलता। तो हृदय की सरलता से दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो गया और उसको लगा कि ये जो अंग्रेज लोग गीता के संदेश को अपना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बस यही इच्छा हमने जागृत करनी है, यही प्रचार है कि लोगों के हृदय में इच्छा जागृत कर दें कि मैं भी भक्ति कर सकता हूं, मुझे भी भक्ति करनी चाहिए। तो केवल अपने आचरण से, कोई उन्होंने फिलॉसफी नहीं दी, केवल अपना आचरण दिखाया और उनके शिष्यों को देखा कि इनमें इतनी तीव्रता है भक्ति करने की, तो हम भी कर सकते हैं। प्रभुपाद जहां भी बोलते वे भगवद गीता या श्रीमद भागवतम के आधार पर कृष्ण और कृष्णा भावामृत की बातें करते। चाहे वह किसी आजीवन सदस्य के घर पे बोल रहे होते या बड़ी संख्या में श्रोताओं के सामने किसी औपचारिक व्याख्यान में या स्वयं अपने कमरे में, उन्हें ऐसा करते हुए कभी थकान नहीं होती। प्रभुपाद की आयु 1970 में कितने वर्ष की होगी? 74 वर्ष के। उस समय प्रभुपाद 74 वर्ष के थे। तो 74 वर्ष किसी वृद्ध को हम देख सकते हैं, वो तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित होता है, और प्रभुपाद 74 वर्ष के थे और कभी थकते नहीं थे, और जहां मौका मिला गीता और भागवतम का संदेश दे रहे हैं। कोई होते थे उनसे प्रश्न पूछता और प्रभुपाद उसका उत्तर अपने शिष्यों से गीता का एक संबंध श्लोक पढ़वा कर आरंभ करते, तब वे उसकी व्याख्या करते। यदि प्रश्नकर्ता उनकी व्याख्या को स्वीकार ना करता तो उन्हें चुनौती देता, तब वे अपना तर्क देते, सब कुछ गीता के आधार पर। अपने निजी डेस्क के पीछे बैठे हुए और समय समय पर अपने लोटे से जल पीते हुए प्रभुपाद घंटों बात करते रहते। तापमान बढ़कर 100 डिग्री हो जाता, फिर भी अपने प्रभुपाद अपने कमरे में बैठे धर्मोपदेश करते रहते। वे कुर्ता या कमीज नहीं पहनते, केवल उत्तरीय सादा वस्त्र धारण करते जिससे उनकी बाहें, कंधे और छाती या कुछ भाग खुला रहता। उनके साथ बैठे भक्त कभी कभी अस्वस्थ हो जाते। उनके साथ उनके शिष्य थे, वे सब थे 19-20 साल के युवा, अमेरिकन, हेल्दी यंग मैन, है ना। वो बेचारे अस्वस्थ हो जाते इतनी गर्मी में और इतने बैठे बैठे। प्रभुपाद 74 वर्ष के हैं, बोले जा रहे हैं, कथा किए जा रहे हैं, उनको और आनंद बढ़ता जा रहा है। अस्वस्थ हो जाते या उन्हें नींद आने लगती या उनका ध्यान हट जाता या कभी कभी बहाना करके वो चले जाते। घंटों बाद लौट कर वे देखते हैं कि प्रभुपाद उस समय भी धर्म उपदेश कर रहे हैं। मेहमान भी आते जाते रहते तो भी भोजन के बाद एक झपकी लेने के अतिरिक्त प्रभुपाद प्राय दिन भर और रात में देर तक धर्मोपदेश करते रहते। यह है नाम गाने सदा रुचि, यह एक शुद्ध भक्त का लक्षण है कि उसको हमेशा भगवान के नाम और गुणगान में रुचि रहती है। जिसमें रुचि होगी उसको देखते हम थकेंगे नहीं, है ना। संसार में देखते हैं लोगों को, अगर टीवी में क्रिकेट मैच भी आ रहा हो तो रात रात भर जाकर देखेंगे, थकते नहीं है, भूख प्यास सब भूल जाते हैं, घर वालों को भी भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी रुचि है। इसी ढंग से प्रभुपाद की रुचि है भगवान के संदेश में, थक नहीं रहे। बाकी जो शिष्य भी नए नए शिष्य बेचारे थक रहे हैं, बहाना कर रहे हैं, नींद आ रही है, वापस आते हैं फिर प्रभुपाद लगे हुए, कोई थकावट नहीं। अपनी विषय वस्तु से उन्हें कभी ऊब नहीं होती और वे तब तक बोलते रहते जब तक कोई रुचि लेने वाला श्रोता वहां बैठा रहता। उनके श्रोता तरह तरह के थे, कभी वे ऐसे कमरे में बोलते जो पतियों और पत्नियों से भरा होता और सभी संस्कृत और सुंदर वेशभूषा में होते। कभी वे एकाकी वृद्ध व्यक्ति से बात करते होते, कभी उनके श्रोता शांतिपूर्वक उनके बात सुनते, कभी तर्क वितर्क करते या कभी उनके वक्तव्य की प्रशंसा करते। श्रोता अपनी गलतफहमी का परिचय देते। कभी कोई मेहमान उनसे पूछ बैठता कि वे बंगाल के प्रसिद्ध संतों और राजनीतिकों की आलोचना क्यों करते थे, और भगवदगीता के आधार पर वे व्याख्या करके बताते कि वास्तविक साधु वह है जो हमेशा कृष्ण की महिमा का गान करे। ये नहीं है कि अपने कोई फेवरेट डिसाइपल आ गए तो उन्हीं के आगे गुणगान कर रहे हैं। कोई भी श्रोता हो, घरे से हों, अच्छे परिवार से हों, तब भी वो गा रहे हैं। अकेला कोई वृद्ध व्यक्ति बेचारा बूढ़ा हो वो सुनने आए, उसको भी सुना रहे हैं। कोई तर्क वितर्क कर रहे हैं उसे तर्क वितर्क कर रहे हैं। प्रभुपाद को रुचि है कृष्ण का गुणगान करने में, तो ये साधु का लक्षण है। प्रभुपाद अपने धर्मोपदेश पराय ऐसी विशेष रुचि वाली घटनाओं से जोड़कर करते सकते थे, जैसे कलकत्ता की राजनीतिक हलचल या वैदिक संस्कृति का पतन। फिर भी स्थानीय मामलों से उनका संबंध केवल तत्कालिक व्यवहारिक आवश्यकता के कारण था, क्योंकि वे भारत से परे थे। वे संसार भर के लोगों, स्थानों और क्रियाकलापों के बारे में सोच रहे थे। पत्रों का उत्तर देते हुए वे गंभीरता से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हवाई या न्यू वृंदावन के मामलों का ध्यान में रखते, और इन सब के परे वे हमेशा कृष्ण के बारे में सोचा करते। वे कृष्ण की महिमा को सारे संसार में फैलाना चाहते थे। यह संयोग था कि भारत उनका वर्तमान कार्यक्षेत्र था। देखिए प्रभुपाद कितने, जैसे कहते हैं, समष्टि गुरु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यहां कलकत्ता में हैं, लेकिन उनको चिंता हो रही है हवाई में क्या हो रहा है, न्यू वृंदावन में क्या हो रहा है। और उस समय कोई इंटरनेट नहीं था, कोई मोबाइल फोन्स नहीं थे, क्या था, लेटर लिखा करते थे और पता नहीं कब चिट्ठी पहुंचेगी, कब वहां से जवाब आएगा। केवल एक ही कम्युनिकेशन का तरीका था। प्रभुपाद फिर भी उनका भी मैनेज कर रहे हैं, साथ साथ में कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं। तो ये है, पूर्ण रूप से व्यस्त हैं, पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं कृष्ण कथा में। भारत के भक्तों को प्रभुपाद को धर्मोपदेश करते निकट से देखने का सौभाग्य मिला था। वे उनकी श्रेष्ठ सहिष्णुता और दयालुता से प्रेरणा ग्रहण करते थे और उसकी तुलना अपनी कमियों पर विचार करते थे। यही हमें करना चाहिए। शिष्य गुरु के जब संपर्क में आए या वरिष्ठ भक्तों के संपर्क में आए तो उससे हमेशा सीखने आना चाहिए कि ये जो वरिष्ठ भक्त हैं कितने सहनशील हैं, कितने दयालु हैं, हर परिस्थिति में ये कैसे व्यवहार कर रहे हैं और मैं क्या क्या गलतियां करता हूं, तो मुझे कहां कहां सुधार लाना है। तो इस ढंग से उनके शिष्य सीख रहे थे, उनकी सहिष्णुता और दयालुता से प्रेरणा ग्रहण करते थे और उनकी तुलना में अपनी कमियों पर विचार करते थे। भारत में नवागंतुकों के रूप में भक्त अब भी कलकत्ता में जीवन यापन के व्यवहारिक मामलों में उलझे हुए थे। यहां का मौसम, बीमारी और सांस्कृतिक झटका उनका ध्यान कृष्ण भानु से हटा रहे थे। अब नए नए भक्त आए हैं अमेरिका से, यहां का वातावरण अलग है, सब बीमार पड़ रहे हैं और सबसे अलग कल्चरल शॉक, वहां इतनी फास्ट पेस लाइफ है और कलकत्ता तो आप सब जानते ही हैं, तो कहां कलकत्ता और कहां न्यूयॉर्क, बिल्कुल कल्चरल शॉक है और मौसम बदल गया, वातावरण बदल गया, बीमार पड़ रहे हैं, तो उनका ध्यान भक्ति से हट रहा था। किंतु प्रभुपाद की उपस्थिति, उनका धर्मोपदेश, उनका दृष्टांत, ये सब उन्हें याद दिला रहे थे कि वास्तविकता भौतिक शरीर से परे थी। कितनी सुंदर बात कि जो रियलिटी है, सच्चाई है, वो इन सब भौतिक परिस्थितियों से परे है। आत्मा का कलकत्ता, न्यूयॉर्क, हवाई से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा का सर्दी गर्मी से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा का धनवान होना, निर्धन होने से कुछ लेना देना नहीं है। इन सब भौतिक परिस्थितियों से परे थे, तो वो ऐसा इसलिए सोच पा रहे थे क्योंकि उनको प्रभुपाद जी का संग प्राप्त हो रहा था। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अध्यात्म पारोक्षयम् गीतम् देवऋषीणा अनघा या श्रावयेत् या शृणुयात् सा लिंगेन विमुच्यते। एतत् अध्यात्म पारोक्ष्यम् गीतं देवऋषिणा नघ या श्रावयेत् या शृणुयात् सा या श्रावयेत् या शृणुयात् सा लिंगेन विमुच्यते। एतत् अध्यात्म पारोक्ष्यम् गीतं देवऋषिणा नघ या श्रावयेत् या शृणुयात् सा लिंगेन विमुच्यते। एतत् अध्यात्म पारोक्ष्यम् गीतम देवऋषिणा नघ या श्रावयत्याश्नुयात सा लिंगेन विमुच्यते। आप सब इकट्ठे दोहरा सकते हैं कृपया करके। अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की
जय।
एता यह अध्यात्मा आध्यात्मिक पारोक्ष्यम प्रामाणिक विवरण गीतम वर्णन किए गए देव ऋषिणा देवऋषि नारद के द्वारा अनाग हे निष्पाप विदुर या जो श्रावयेत वर्णन कर सकता है या जो श्रुणुयात सुन सकता है सा वह लिंगेन देहात्म बुद्धि से विमुच्यते छूट जाता है। अनुवाद हे विदुर जो कोई जीव की आध्यात्मिक उपस्थिति को समझने से संबंध नारद द्वारा कहे गए इस आख्यान को सुनता है या अन्य को सुनाता है वे देहात्म बुद्धि से छूट जाता है। कृपया मेरे पीछे दोहराइए
हे विदुर
जो कोई जीव की
आध्यात्मिक उपस्थिति को
समझने से
संबंध
नारद द्वारा
कहे गए
इस आख्यान को
सुनता है
या
अन्यों
को
सुनाता है
वह
देहात्म बुद्धि
से
छूट जाता है।
तात्पर्य यह भौतिक सृष्टि आत्मा का स्वप्न है। वस्तुतः इस भौतिक जगत का संपूर्ण अस्तित्व महाविष्णु का स्वप्न है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णन मिलता है या कारण अर्णव जले भजति स्म योगा निद्रा अनंत जगदंड सरोम कूपा। यह जगत महाविष्णु की स्वप्न अवस्था द्वारा उत्पन्न हुआ है। वास्तविक पद तो आध्यात्मिक जगत है किंतु जब आत्मा परमात्मा का अनुकरण करना चाहता है तो वह स्वप्न जगत में भेज दिया जाता है। जब जीव को श्री नारद महामुनि या उनके दासों की संगति करने का सुअवसर मिलता है तो वह भौतिक सृष्टि के स्वप्न लोक या देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है।
ओम अज्ञानस्ति मिरांधस्य।
हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का एकादशी के अवसर पर हार्दिक स्वागत है। तो अभी अध्याय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। 29वें अध्याय का नाम है नारद तथा राजा प्राचीन भरी के मध्य बातचीत। क्या बातचीत हुई दोनों में? क्या बातचीत हुई के मध्य बातचीत क्या बातचीत हुई तो क्या बातचीत हुई और उस बातचीत का क्या लाभ है ये बता रहे हैं आज के श्लोक में कौन? मैत्रेय मुनि। अब आप समझे बीच में मैत्रेय मुनि जी कहां से आ गए? पूरे अध्याय में तो मैत्रेय मुनि का नाम आया नहीं। तो वास्तव में ये प्रसंग शुरू हुआ है तीसरे स्कंद से। मैत्रेय मुनि जी कथा कर रहे हैं विदुर को और उसके बीच में ये उपप्रसंग आया। तो मैत्रेय मुनि जी बता रहे हैं कि एतत् अध्यात्म पारोक्ष्यम। एतत् मतलब है यह है अध्यात्म का आध्यात्मिक, पारोक्ष्यम प्रामाणिक विवरण ये बातचीत। गीतम देव ऋषिना जो देव ऋषि का ये गीत है। देव ऋषि कौन हुए? नारद जी। नारद जी ने जो गीत गाया है क्या गीत गाया? भगवान का गुणगान। जीव की वास्तविक स्थिति के वास्तव में आत्मा क्या है, भगवान क्या है, जीव और आत्मा का भगवान का क्या संबंध है, हम इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं, कैसे हम इस जीवन में वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकते हैं, कर्म कांड क्या है, ज्ञान कांड क्या है, भक्ति योग क्या है, ये सारा का सारा ज्ञान पिछले श्लोकों में नारद मुनि जी ने हम सबको दिया राजा प्राचीन भरि के माध्यम से। तो अनघ, अनघ कौन है? पाप रहित। कौन है ये? किसको बता रहे हैं? विदुर जी को। कि हे विदुर एतत् अध्यात्म पारोक्ष्यम गीतम देवऋषि नानघम या श्राव्य जो इस गीत का इस विवरण का का गुणगान करता है या सुनता है तो उसको क्या लाभ प्राप्त होगा? सा लिंगेन विमुच्यते। लिंगेन का अर्थ होता है स्त्रीलिंग, पुलिंग, यानी कि देहात्म बुद्धि से वो मुक्ति प्राप्त कर लेगा। जो नारद मुनि और राजा प्राचीन मरे के मध्य इस बातचीत को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होगा? वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाएगा। तो देहात्म बुद्धि से मुक्त होना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? है? देहात्म बुद्धि से मुक्त होंगे तो क्या होगा, क्या लाभ प्राप्त होगा देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर? ऐसी कौन सी बात होगी इसमें बोले ये मध्य इसके मध्य बातचीत सुनेंगे तो देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाएंगे, तो उसके उससे क्या लाभ होगा? कोई बता सकता है? उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, तो क्या होगा? जन्म मृत्यु संचार व्याधि से मुक्त होगी तो क्या होगा, तो क्या होगा? आनंद प्राप्त होगा। सीधा बिजनेस, लेट्स टॉक बिजनेस, ये सब बातें ठीक हैं, आत्मा ये वो, लेकिन मुझे मिलेगा क्या? है ना, बहुत ही हम सबका ये होता है ना, व्हाट्स देयर इन फॉर मी, ये जो प्रोडक्ट है बोलते हैं यार लीजिए प्रोडक्ट, मेरे को क्या लाभ प्राप्त होगा? बोले इसमें ये है वो है वो सब बातें ठीक है, मुझे क्या लाभ प्राप्त होगा? आप सीधी सीधी बात बताइए। अगर वो अच्छा सेल्समैन सीधा इस पॉइंट पे हिट करता है कि आपको ये लाभ प्राप्त होगा, तो हम तुरंत उसको खरीद लेते हैं, है ना। तो हमें जाना चाहिए ये क्या, इससे बढ़कर क्या बात होगा? देहात्म बुद्धि से मुक्त होंगे तो क्या, देहात्म बुद्धि से मुक्त होंगे तो हमें वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, जब तक हम देहात्म बुद्धि में हैं, हम हमेशा दुखी रहेंगे। सदा सुमिद्विन धीयम असत्कह, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। देहात्म बुद्धि का अर्थ है कि अपने आप को ये शरीर मानना, मैं और मेरा, मैं ये शरीर हूं और इस शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं वो मेरी हैं, मेरी पत्नी, कितना पॉजिटिव लगते हैं, मेरी पत्नी है ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वो किसी और से बात करे वो एक गुस्सा है, क्योंकि मैं, ये मेरी है ना, ये मेरा शिष्य है, मैंने इसको शिष्य, मैंने इसको भक्त माना, ये मेरा है, स्टैंप लगा दी, ये मेरा, मैं और मेरा, ये मेरा घर। कोई हमें गिफ्ट भी देता है तो जी आपके लिए उपहार आए, अभी तक मेरा नहीं था, कुछ नहीं था, गिफ्ट दिया और उस गिफ्ट को किसी और ने ले लिया, कितना क्रोध आता है हमें, अरे वो तो मेरा था, आपका कहां था? अरे वो तो मेरे लिए लेके आए थे, आपका तो था ही नहीं, आपको तो उपहार मिला था। मैं और मेरा, ये आ सकती, ये है देहात्म बुद्धि, मैं और मेरा, मेरा देश, मेरी जाति, मेरा समाज, अलग अलग समाज है, वैश्य समाज, स्त्रियों का समाज, क्षत्रियों का समाज, ब्राह्मणों का समाज, मैं मेरा, मैं मेरा, कितने जगह हम इसमें जुड़े हुए हैं, मैं और मेरा, बिल्कुल इसमें फंसे पड़े हैं। तो यह देहात्म बुद्धि बिल्कुल अंदर तक जकड़े पड़े हैं। सदा सुमिद्विन धीयम असत्कराद, तभी हम लोग हमेशा दुखी रहते हैं। तो कितना बड़ा लाभ प्राप्त होगा कि हम इस जाल से निकल पाएंगे और जीवन के असली आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। सारे के सारे दुखों का कारण ये अज्ञानता है कि हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं। और देखिए, नारद मुनि जी जैसे महाभागवत का संग करके कोई भी देहात्म बुद्धि से मुक्त हो सकता है, बस उसको मालूम होना चाहिए कि संग कैसे करना है। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि नारद मुनि जी या उनके शिष्यों के संपर्क में आकर कोई भी इस लाभ को प्राप्त कर सकता है और देहात्म बुद्धि से मुक्त हो सकता है। वास्तव में इस जगत को स्वप्न का जगत बताया गया, एक स्वप्न है। तो बताया कि जब हम किसी गुरु के संपर्क में आते हैं, प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आते हैं, तो गुरु हमारी निद्रा को खोलते हैं। ओम अज्ञानस्य मृन्दस्य ज्ञानंजन शलाकया, आंखों को खोलते हैं, तब हमारी असली जीवन शुरू होता है। अभी तक चल रहा है रियल लाइफ, रियल लाइफ समझते हैं सिनेमा का लाइफ, तब शुरू होता है रियल लाइफ। तो रियल लाइफ से रियल लाइफ में चले जाते हैं गुरु के माध्यम से। गुरु के संपर्क में आते ही हमारा असली जीवन शुरू होता है, तभी बोलते हैं इनिशिएशन, शुरुआत हुई है, हमारा जन्म हुआ है, अभी तक हम सो रहे हैं। अगर हम प्रमाणिक गुरु के संपर्क में नहीं आए हैं, उनकी शरण ग्रहण नहीं किए हैं, तो अभी हम पैदा नहीं हुए हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से हम सो रहे हैं, इस स्वप्न का जीवन चल रहा है। मैं और मेरा, मैं मेरा घर, मैं मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे नाम प्रॉपर्टी, मेरे बच्चों के नाम प्रॉपर्टी, उसमें लड़ाई झगड़े सब सब हम इसमें फंसे हुए हैं। तो यह देहात्म बुद्धि है, लेकिन भक्तों के संपर्क में आते ही इस देहात्म बुद्धि से हम मुक्त हो जाएंगे, सारे के सारे बंधन काट दिए जाएंगे। कितना बड़ा वरदान है। और यही हुआ, राजा प्राचीन परिषद बिल्कुल डूबा पड़ा था देहात्म बुद्धि में, तरह तरह के कर्म कांड कर रहा था, वो चाहता था कि मैं स्वर्ग लोक को प्राप्त करूं। उसने कई पशुओं की हत्या कर दी, कई पशुओं को मारे, तो नारद मुनि ने उसको चित्र दिखाया, जितने पशु देखो सबके सब ऊपर आकाश में, सबके सब प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम कब शरीर छोड़ोगे, और जितनी बारी तुमने काटा है, जिन जिन पशुओं को काटा है, उन पशुओं के शरीर में जितने जितने बाल हैं उतनी बारी तुम्हें कटना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा। तो ऐसा दृश्य उनको दिखाया, और फिर नारद मुनि जी उनको सही संदेश दिया कि तुम्हें केवल भक्ति करके ही तुम अपने जीवन को का उद्धार कर सकते हो। तो जब राजा परिषद को सब स्पष्ट हो गया कि अब मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत इमीडिएटली घर छोड़कर वन में चले गए, इमीडिएटली, प्रतीक्षा नहीं की। हाँ, बात तो बहुत अच्छी करे नारद मुनि जी, बहुत बढ़िया बात है, ये तो करना ही चाहिए, भक्ति के बिना है ही क्या जी, जो रस इसमें है कहीं नहीं है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, लेकिन करते हम वही रहेंगे जो हम करते आए हैं, है ना, कोई जीवन में परिवर्तन नहीं। राजा परिषद वर्षद के बेटे थे 10 प्रचेतस, वो गए थे जंगल में तपस्या के लिए, 10,000 साल तक पानी में उन्होंने तपस्या की। तो राजा प्राचीन परिषद ने यही बोला, नारद मुनि जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप कुछ जलपान कीजिए, प्रसाद पाइए, आपने इतना अच्छी बातें बताई, अब मेरे बेटे को आने दो, उनको सारा राज्य सौंपूंगा, चला जाऊंगा। ये प्रजापति थे, पूरे पृथ्वी के राजा, बोले बस आने दो, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है किसको सौंप के जाऊंगा, तब मैं चला जाऊंगा। नहीं, जैसे जीवन का लक्ष्य मालूम चला कि जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरण ग्रहण करना, रुके नहीं। तो जब हमें मालूम चले जीवन का लक्ष्य ये है, उसके बाद भी हम व्यवसात्मी का बुद्धि होकर नहीं लगते हैं भक्ति में, तो बहुत बड़ी मूर्खता है। जानिया बुझिया विष खाई ना, मालूम है ये विष है, इन तृप्ति विष है, मालूम है, सब शास्त्रों में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, अपना अनुभव है, फिर भी हम उसको छोड़े नहीं। जानिया बुझिया विष खाई ना, ये कौन सी मूर्ख बुद्धिमता है। तो तुरंत निकल गए, तुरंत, शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य जल्दी करना चाहिए, उसमें प्रतीक्षा नहीं, उसको टालना नहीं चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, श्रीधर महाराज क्या कहते हैं, शुभस्य का अर्थ क्या है, अच्छे को स्वीकार करना, बुरे को त्यागना, यानी जो भक्ति के अनुकूल है उसको तुरंत स्वीकार करना चाहिए, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको तुरंत त्यागना चाहिए, तुरंत। हमारे हमारी कमी क्या है, जो भक्ति के अनुकूल वस्तुएं हैं उससे हमारी बहुत गहरी आसक्ति है, अपने अनर्थों से हमें प्रेम है, हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, लेकिन हम फंसे हुए अनर्थ प्रेम में, अनर्थों से प्रेम है, बहुत प्रगाढ़ प्रेम है, उनको हम छोड़ना नहीं चाहते, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते, भौतिक आसक्ति बनाए रखना चाहते हैं, और बोलते हैं साथ साथ में कृष्ण प्रेम भी मिल जाए, भक्ति भी मिल जाए, नहीं। प्राचीन परिषद दिखा रहे हैं तुरंत छोड़ दिया, तुरंत, ये है वैदिक संस्कृति, ये है जीवन में प्रगति करने के लक्षण। जीवन में प्रगति का अर्थ है अपने अंदर विरक्ति लाना, जीवन में प्रगति का अर्थ ये नहीं है कि प्रॉपर्टी बढ़ाओ, अरे जितनी प्रॉपर्टी बढ़ाएंगे उतने फंस रहे हैं। जीवन प्रगति का अर्थ है कि और धन कमाएं, और कागज के नोट कमाएं, और धोखा दें, झूठ बोलें, किसी ढंग से समाज में अपनी परिस्थिति को आगे बढ़ाएं। एडवांस कंट्री, आजकल यही एडवांसमेंट की निशानी है कि आगे बढ़ो, ये तो आगे बढ़ रहे हैं नर्क जाने के लिए। जीवन में प्रगति का अर्थ है अपने आपको इस भौतिक जंजाल से छुटकारा दिलाएं, ये सारे बंधन काटें एक एक करके। हाँ, ये अनर्थ कटा, ये कटा, ये कटा, ये है। तो अपने अंदर विरक्ति लाना ही जीवन में प्रगति का लक्षण है। आज के संसार में ये बातें सुनकर लोग डर जाते हैं, अरे विरक्ति, वास्तव में विरक्ति में ही आनंद है, अनासक्त होकर ही हम प्रसन्न रह सकते हैं, आसक्ति ही हमारे दुखों का कारण है। आप अपने जीवन में देख लीजिए, जिस जिस वस्तु से हमको आसक्ति है वही हमें दुख देती है, आसक्ति ही हमारे दुखों का कारण है, अनासक्त होना ही आनंद का रास्ता है, डिटैचमेंट विल ब्रिंग अस हैप्पीनेस। तो अपने आप को हमें अनासक्त करना सीखना चाहिए। सारे के सारे वैदिक शास्त्र इसीलिए बनाए गए हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को इसीलिए भेजते हैं, भगवान स्वयं भी इसीलिए अवतरित होते हैं कि आप इस भौतिक जगत से छुटकारा पाइए, क्योंकि ये हमारा घर नहीं है, ये केवल भगवान श्री कृष्ण का ही कहना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जितने प्रतिनिधि भेजे भगवत गीता में, भागवतम में, बाइबल में, कुरान में, हर कोई यही बता रहा है कि ये आपका घर नहीं है, हमारा असली घर है भगवान का धाम। देखिए हम लोग धाम से आए हैं, कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को देख सकते हैं, हमारी क्या क्या इच्छाएं हैं। हम चाहते हैं हम कभी ना मरें, कोई मरना चाहता है? हम चाहते हैं हमेशा हम युवा रहें, सुंदर रहें, है ना। हम चाहते हैं हमेशा ज्ञानमय रहें, है ना। तो ये इच्छाएं संसार में तो पूरी हो ही नहीं सकती, इस संसार में तो हर चीज का क्षय हो ही रहा है, हर किसी को मरना ही पड़ेगा, हर किसी को बीमार होना ही पड़ेगा। तो ये इच्छाएं कहां से आई, ये इच्छाएं कहां से आई? हम इस भौतिक जगत में रहते हैं लेकिन हमारी सारी की सारी इच्छाएं वास्तव में आध्यात्मिक हैं। वी वॉन्ट एटर्नल ब्लिस, वी वॉन्ट एटर्नल लाइफ, वी वॉन्ट नॉलेज। तो ये सारी इच्छाएं इस संसार में पूरी नहीं हो सकती, ये सारी की सारी इच्छाएं आध्यात्मिक जगत से ही आई हैं, क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत के ही हैं। और वेदों का कहना है आनंदात धीमनी भूतानी जायन्ते, कि आनंद के ही हम पुत्र हैं। तो हमारी वास्तविक स्थिति है आनंद में ही रहना, इस निरानंद जड़ जगत में हम दुख ही दुख पाएंगे। आत्मा को पिछले श्लोक में बताया गया है इस भौतिक तत्वों में मिला दिया गया है। पेट्रोल को अगर पानी में मिला देंगे तो पेट्रोल कभी पानी में मिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्रकृति अलग है, वो हमेशा अलग ही रहेगा। तो हम चिन्मय हैं और ये भौतिक जगत जड़ है, निरानंद है, इसमें कोई जीवन नहीं है, और हमें सच्चिदानंद, तो इसमें हम कभी मिक्स नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। तो हमेशा इसमें अलग ही रहेंगे, हम कभी भी अपने आप को यहां पे कंफर्टेबल नहीं पाएंगे, कभी भी कहीं भी चले जाएं कभी भी नहीं पाएंगे, चाहे हम धनी हो निर्धन हो कोई भी हो कभी नहीं। लेकिन हमें लगता है नहीं, बस थोड़ा सा ये हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, थोड़ा सा ये हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। जैसे हम जाते हैं ना जिम में, ट्रेडमिल करते हैं ना, चलती रहती है, यही लग, बस वो चल रहा है कि बस आगे 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 आ गया, अभी आया, ये हो जाए, बस वो चलता ही रहता है, इट्स लाइक अ ट्रेडमिल। सुख नहीं मिलता, कभी नहीं मिल सकता सुख। बाहर से दिखने में सब अलग अलग लग रहे हैं कि ये मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहा है, ये रोल्स रॉयस में घूम रहा है, ये बेचारा रिक्शा में जा रहा है, ये पैदल जा रहा है, इसने सुंदर कपड़े डाल रहे हैं, इसने बिल्कुल कपड़े नहीं डाले हुए, ये कितना सुंदर है, कितना कुरूप है, सब अलग 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 दिख रहे हैं। लेकिन अंदर से सबकी स्थिति एक ही है, क्या है? सब दुखी है। बाहर से कितनी विविधता है, बाहर से अलग अलग दिख रहे हैं, अरे सब ये चकाचौंध, ये कोई सोच रहा है मैं देवता बन जाऊंगा, ये सब देवता लोगों की भी स्थिति है, सब अलग अलग दिख रहे हैं, वेराइटीज दिख रहे हैं। वो सोच अगर मैं ये बन जाऊं, सोच मैं ये हो जाऊं सुखी। अंदर से अगर लिखा जाए, सबका निकाला जाए, सूक्ष्म शरीर दिखाओ भाई, स्थूल शरीर नहीं देखना, सूक्ष्म शरीर दिखाओ, सबके अंदर कुंठा द्वेष फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जो नित्य लीला में प्रवेश कर गए, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, वो प्रचार करते थे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में, नेल्सन मंडेला को, मोहम्मद अली को। तो मोहम्मद अली को ये एडवाइजर थे, तो मोहम्मद अली के पास वो बैठे थे एक बार सुबह समय था 7:15 का दर्शनार्थी का। तो उस दर्शनार्थी के समय क्या हुआ, मोहम्मद अली सुबह सुबह उठे और बड़े गुस्से में थे, और उन्होंने बताया इस औरिनेत भक्ति स्वामी महाराज को, देखो मेरा क्या जीवन है, सुबह सुबह का समय है और बाहर देखो अब झांक के हजारों लोग मेरे घर में आ गए हैं मेरे दर्शन के लिए, और ये सब के सब मुझे तंग करने आए हैं, हैरास करने आए हैं मुझे सबके सब। बोले क्या है जीवन की विडंबना, मुझे समझ नहीं आ रही। जब मैं छोटा बच्चा था, गरीब था, गरीब खानदान से था, मैं बड़े बड़े महलों को देखता था, मेरे मन में तीव्र इच्छा होती थी कि मैं इनमें रहूंगा, बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा, सब स्त्रियों का भोग करूंगा, धन होगा, यश होगा। बोले आज सब कुछ है, रोल्स रॉयस गाड़ी है मेरे पास, सारे तरह तरह की सुविधाएं हैं, किसी भी स्त्री का मैं भोग कर सकता हूं, संसार का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हूं, कहीं से भी निकलता हूं बोलते मोहम्मद अली जा रहे हैं, लोग मेरे पीछे भागते हैं, पागल है मेरे लिए। लेकिन मुझे गुस्सा आता है इनको देखकर, दुखी हूं इनसे, कुंठित हूं, मैं चाहता हूं वही अच्छा बच्चा था, मैं वो बच्चा था जब मैं गरीब था वो ज्यादा अच्छा था। तो ये उसकी हालत है देखिए। और कई लोग ऐसे इतना यश पाके, इतना धन पाके आत्महत्या कर लेते, दुखी हो जाते। तो कोई भी सुखी नहीं है, अंदर से सबके सब का एक ही स्थिति है कि सबके सब दुखी है। क्यों? अज्ञानता के कारण, देहात्म बुद्धि के कारण, मैं और मेरा। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। पहली अज्ञानता यह है कि मैं ये शरीर हूं, और दूसरी अज्ञानता में विकास क्या होता है कि इस शरीर से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं सबकी सब मेरी हैं, और जब सब मेरी हैं तो मैं भोगता हूं, ये मेरे लिए बनाई गई हैं। आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस, ये पूरे सृष्टि की रचना मेरे भोग के लिए है ना। फिर हम कृष्ण से द्वेष प्रारंभ हो जाता है। भगवान कह रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसा, कि मैं भोगता हूं, हम बोलते नहीं मैं भोगता हूं, तो फिर यहां से द्वेष शुरू होता है और जीव हमेशा कुंठित रहता है। तो इसका निवारण कैसे होगा? इसका निवारण होगा जब हम किसी शुद्ध भक्त के संग में आएंगे, जैसे राजा प्राचीन भरिषत का की मुक्ति हुई है। राजा प्राचीन भरिषत के मुख से जब उसने संदेश सुने तो उसके राजा प्राचीन भरिषत जब नारद मुनि के मुख से संदेश सुने तो उनके हृदय में एक क्रांति आई, एक रिवोल्यूशन आया। तो हम सबको भी अपने हृदय में एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति लानी होगी, अन्यथा इस संसार से छुटकारा पाना असंभव है। आचार्यगण उदाहरण देते हैं, जैसे एक मकड़ी के जाले में एक मक्खी फंस जाए, जितना ज्यादा मक्खी प्रयास करती है कि इस जाले से बाहर निकलूं, उतनी ज्यादा वो फंसती जाती है। इसलिए जितना ज्यादा इस संसार में हम आनंद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे उतने ज्यादा हम फंसते जाएंगे, असंभव है। तो कैसे निकला जाए? तो देखिए कितना महिमा है भक्तों के संग के। भागवतम के दशम स्कंद में राजा मुचुकुंद प्रार्थना करते हैं। राजा मुचुकुंद की कहानी आप सब जानते होंगे। राजा मुचुकुंद वो राजा थे जो देवताओं की तरह से लड़ाई करते थे और इतनी परिश्रम करते थे कि कई कई साल सोते नहीं थे। देवताओं की तरफ से लड़ाई करते थे, असुरों को हरा देते थे। तो फिर देवताओं से उनसे इतने प्रसन्न हुए, देवताओं ने कहा कोई आशीर्वाद दीजिए, कोई आशीर्वाद ग्रहण करो। तो उन्होंने क्या आशीर्वाद मांगा? कि मैं बहुत थक गया हूं, अब मैं सोना चाहता हूं, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो कहीं गुफा में जाके वो सो गए थे। और फिर लंबी कहानी, एक असुर थे काले अमान, उनका कैसे वध हुआ। तो जब वो अपनी नींद से जागे, उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, तो उन्होंने प्रार्थनाएं की, बहुत सुंदर प्रार्थना है। भगवान के दशम स्कंद के 51वें अध्याय में कृष्णा पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें वो प्रार्थना कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में भटकते 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 कई कई योनियों में, कई ब्रह्मांडों में भटकने के बाद जब कोई जीव मुक्ति के योग्य होता है तो उसको आप भक्तों का संग दे देते हैं। भक्तों का संग तब मिलता है जब भगवान ने सोच लिया कि अब इस जीव का मैंने उद्धार करना है, इससे विशेष कृपा करनी है। इतनी बड़ी कृपा है, देखिए। नहीं तो कोई चारा नहीं है। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने असंख्य जीवों में से हमें चुन लिया कि अब बहुत हो गए, बहुत भटक लिए, अब इन जीवों पर कृपा करता हूं, अब इनको मैं मुक्ति का रास्ता दिखाता हूं। तो इनकी भेंट किसी प्रमाणिक साधु से करा देता हूं, तो हमें प्रमाणिक साधु शिल प्रभुपाद जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो अब हमारे मुक्ति के द्वार खुल गए हैं। तो ये है भक्तों की संघ की महिमा। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, संसार भ्रमिते को न भाग्य कहे तरे, नदीरा प्रवाहे ये न काष्ठा लागे तीरे। कि अनेक अनेक ब्रह्मांडों में, अनेक अनेक योनियों में भटकने के बाद किस जीव का उद्धार होता है, कैसे होता है? संसार भ्रमते को न भाग्य कहे तेरे, नदीरा प्रवाहे ये न काष्ठा लागे तीरे। ये इतने ही चांसेस हैं किसी के इस बहुत जैसे छुटकारा पाने के, जैसे एक पूरी नदी में, एक समुद्र में लकड़ी के कई टुकड़े हों और उस समुद्र के प्रवाह में बहे जा रहे हैं, कोई एक लकड़ी का टुकड़ा कोने में आ गया, बस तट पर आ गया। तो ऐसे कई ब्रह्मांडों में हम भटक रहे हैं, एक विशेष कृपा हुई कि हम तट पर आ गए, हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पा गए, और वो होता है जब भक्तों का हमें संग प्राप्त होता है। तो इसलिए जब तक हम भक्तों के संग में नहीं आएंगे और हम सीखेंगे नहीं कि भक्तों के संग में हमें क्या करना चाहिए, तब तक इस भौतिक जंजाल से हम छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। भौतिक जंजाल बहुत बहुत दुखदायी है, ये अज्ञानता हमारे सारे दुखों का कारण है। भागवतम के 11वें स्कंद में राजा निमि, जो कि परम वैष्णव है, उनके राज्य में नव योगेंद्र आते हैं। तो यह नव योगेंद्रों में से राजा निमि एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं, जो कि हम सबके लिए बहुत ही एप्लीकेबल है। पूछते हैं कि आप मुझे ये ज्ञान दीजिए कि संसार का सबसे मूर्ख व्यक्ति, सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति अगर है कोई, स्थूल धी, बड़ी मोटी बुद्धि है जिसके, क्या उसके लिए अभी कोई चांस है संसार से छुटकारा पाने का? ये बताओ आप, सीधी सीधी बात जो हमारे लिए अप्लीकेबल है ना, हम सबकी यही स्थिति है ना, सबकी यही स्थिति है, पुनः मतवानी है कि मोटी बुद्धि, अध्यात्म में कोई रुचि नहीं, बिल्कुल मूर्ख, अव्वल दर्जे के मूर्ख, तो भैया कोई है, कोई चांस है निकलने का? वो बताइए बात साहब। देखिए कितने कृपालु हैं राजा ने भी, हम सबके लिए प्रश्न पूछिए, वो खुद परम वैष्णव है लेकिन अपने आप को मूर्ख बांधते हुए। तो फिर नव योग में से प्रबुद्ध, उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने पहले बताया कि इस मूर्ख व्यक्ति के, मोटी बुद्धि वाले के क्या लक्षण होते हैं और कैसे कैसे आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है और कैसे उसका उद्धार होता है। ये भागवतम के 11 स्कंद के 3 अध्याय में इसका बहुत सुंदर वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि स्थूल धी का, जो मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि मैं ये शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, यह सात्म बुद्धि गुणा पितृ धातु के स्वधिक लताद्रेशु निज भूम इज्जति, यस्य तीर्थ बुद्धि शरीर न करेश्चित जनेशु अभिगेशु सा एव गो खरा। क्या है? यस्य आत्मबुद्धि गुणा पितृ धातु के, जो अपने आप को इस शरीर समझ रहा है, 3 धातुओं का बना हुआ, कफ वात पित्त के बने हुए शरीर को स्वयं समझ रहा है, स्वधिक लातरेशु, वो सोच रहा है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे जो हमेशा मेरे ही रहेंगे, निज भौम इज्जति, जहां मैं पैदा हुआ हूं ये मेरी भारत भूमि, ये पूजनीय है ना, मैं अमेरिका में पैदा हूं, ये पूजनीय है ना, इसकी पूजा करनी चाहिए, देशभक्ति। यस तीर्थ बुद्धे सलीले न करे चेत, वो जाएगा तीर्थ स्थानों पे, क्या करेगा? बस स्नान करेगा, सुनेगा नहीं, भक्तों से श्रवण नहीं करेगा, वो कैसा मूर्ख है? सा एव गो खरा, गाय और गधे के समान है, बिल्कुल पशु के समान है। ये है मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति। मोटी वाला बुद्धि अपने आप को पुरुष स्त्री धनवान निर्धन समझता है, हम जितना मर्जी कह लें, जितना मर्जी हम सोच लें, हर कोई समझता है मैं पुरुष हूं, स्त्रियां सोचती हैं मैं स्त्री हूं, हमें ये आभूषण डालना है, ये कपड़े डालने हैं, ऐसा व्यवहार करना है, ये मैं पुरुष, मैं स्त्री। फिर क्या होता है? पुंसा स्त्रीय मैथुन भावम एता तयो मित्र हृदय ग्रंथम आहु अतः ग्रह क्षेत्र सुप्ताप्त वित्ते जनस्य मोह अयम अहमाम मेति। ये शुरुआत कैसे होती है इस अज्ञानता की, कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, फिर दोनों के बीच में आकर्षण, पुंसा स्त्रीय मैथुन भावम एता, मैथुन करने की इच्छा, और फिर मैथुन करने के लिए संबंध स्थापित करते हैं। फिर क्या होता है? अतः ग्रह क्षेत्र सुप्ताप्त वित्ते, शास्त्र में बताया गया है स्त्री का अर्थ है विस्तार, अनलिमिटेड एक्सपेंशन, निरंतर विस्तार, किसमें? अज्ञानता में, अंधकार में, मोह का विस्तार, विस्तार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, क्योंकि ये जो मैथुन करने की इच्छा है, काम, ये हमारा नित्य वैरी है। भगवान गीता में अर्जुन को साफ साफ बता रहे हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशला महापापमा विधि इनाम हम वैरी नाम, कि जान जाओ ये आपका नित्य वैरी है, ये बिल्कुल आपका नाश कर देगा, नाश कर देगा। ना चाहते हुए भी हम गलत काम करते हैं, उसका मुख्य कारण है ये काम, ये हमारा नित्य वैरी है। लेकिन आज के समाज में देखिए, हम अपने काम वासनाओं को और उत्तेजना देते हैं और बढ़ावा देते हैं, जितना ज्यादा हम इन काम वासनाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे उतनी ये बढ़ेंगी, अग्नि में घी डालने के समान है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनले नचा, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेंगी, और जब तक ये काम वासनाएं रहेंगी हम कभी संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। लेकिन पूरे समाज में आप देखिए देहात्म बुद्धि को बढ़ाया जा रहा है ना, अश्लील चित्र, अश्लील पोस्टर, पता नहीं लगता कि बहुत बड़ा रहस्य है ये ना, कि स्त्री के नग्न अर्धनग्न चित्र को देख लिया, अरे बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आनंद है, रसो वैसा है, ये आनंद का भंडार है। अगर वो सुंदर स्त्री आपको इतना आनंद दे सकती थी, खुद बेचारी कितनी दुखी है, कोई सुंदर पुरुष अगर आपके आनंद का स्रोत बनेगा, उसके बेचारे खुद तरह तरह की बीमारियों से जड़ित है, उसका शरीर अंदर गंदगी भरी पड़ी, हमारे शरीर में कफ वात पित्त मल मूत्र खून मज्जा हड्डियां, कभी यहां दर्द कभी वहां दर्द, कभी ये कम हो गया कभी ये ज्यादा हो गया, हमेशा शरीर बीमार ही बीमार,
कैसे ही हमें सुख दे सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कोई शरीर दिख जाए, अंग प्रदर्शन किया जाता है सिनेमाओं में, चलचित्रों में, मैगजीन्स में, अरे पता नहीं लगता है क्या हो जाएगा। बहुत गुह्यतम बात बताई जा रही है ना, बहुत बड़े बहुत बड़ा विज्ञान है, इसमें आनंद ही आनंद है, सबके अंदर ये लगा हुआ है, ये आनंद है, असली आनंद है, इसको प्राप्त करना है। पागल हुए पड़े हैं सब, एक बार प्राप्त किया नहीं भूजी प्यास, दूसरी बार, तीसरी बार, कई और तरीका, नया तरीका, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, कैसे काम वास्ताओं को पूर्ण किया जाए नए नए तरीकों से, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। इस चक्र में हम कितने पाप कर रहे हैं, कितने ज्यादा हम नरकों में जाएंगे, कितने कितने सालों तक हम भक्त भगवान से दूर हो जाएंगे। मैथुन करना भगवान से द्वेष की परिकाष्ठा है, टॉप मोस्ट एनवी, क्योंकि उसमें अपने आप को भोगता समझते हैं, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं इस शरीर को भोगूंगा, सीधा साक्षात भगवान से द्वेष, द्वेष की परिकाष्ठा, इससे उच्चतम द्वेष और कोई नहीं हो सकता। तो कैसे हम एक द्वेष भी करते रहेंगे और भगवान से प्रेम भी चाहेंगे, संभव नहीं है। तो बढ़ाया जा रहा है इन काम वासनाओं को, और पूरी वैदिक संस्कृति को भूल गए हैं। वैदिक समाज में एक सन्यासी को बहुत आदर दिया जाता था, एक सन्यासी पूरे समाज का गुरु होता था। क्यों सन्यासी को आदर किस लिए दिया जाता था, क्योंकि ये सन्यासी है, इसने अपनी काम वासनाओं पर रोका हुआ है, उस वेग को सहर है, तो ये धीर व्यक्ति है, ये बहुत आदरणीय व्यक्ति है, जो हम नहीं कर पाए ये कर पाया, तो इसका आदर देना चाहिए, इसकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। और समाज के हर एक वर्ण और हर एक आश्रम का व्यक्ति यही प्रयास कर रहा होता था कि कैसे मैं अपने आप को इन काम वासनाओं से मुक्त दिलाऊं, कैसे मैं धीर व्यक्ति बनूं, हर किसी का ये प्रयास होता था। और फिर उनके रोल मॉडल होते थे सन्यासी, हाँ ये कर सके, तो ये हमारे आदरणीय, ये हमारे आदर्श व्यक्ति हैं, इनको आदर देना चाहिए, तो उनको आदर मिलता था। लेकिन आजकल किसी से ही पूछा आपके रोल मॉडल कौन है, कोई नहीं बोलेगा सन्यासी, सन्यासी सुनते लोग डरते हैं, है ना, सन्यासी तो नहीं, हमारे रोल मॉडल हैं फिल्म स्टार्स, क्रिकेट स्टार्स, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, जो बेचारे खूब काम वासनाओं से वशीभूत हैं। तो वैदिक संस्कृति को आज के हम आधुनिक जीवन में कहां उतारते हैं, देखिए कितने ज्यादा भोगने की प्रवृत्ति है कि वैदिक संस्कृति का उपयोग भी हम अपने भोग के लिए करते हैं। वैदिक संस्कृति में जाकर ढूंढते हैं काम सूत्र के बारे में, कि वेदों में भी बताया गया है कैसे काम वासनाओं को अच्छे ढंग से तृप्त कर सकते हैं, नए नए तरीके हैं, कई तरीके हैं, तो काम सूत्र का प्रचार किया जाता है। कहीं भी आप पुस्तकों में चले जाओ, बड़े बड़े बुक स्टोर्स में आराम से आपको काम सूत्र मिल रहा है, विदेशों में चले जाओ तो काम सूत्र ग्रंथ आपको मिलेगा। तो उनको जानना चाहिए, मनुष्य जीवन काम सूत्र के लिए नहीं, वेदांत सूत्र के लिए मिला है। अधातो ब्रह्म जिज्ञासा, सारे जानो जैसे तुम कौन हो, वेदांत सूत्र की शरण लो, काम सूत्र की शरण मत लो। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य शरीर मिला है, अब तो जान जाओ कौन हो। एक कुत्ता भी अपने आप को कुत्ता समझता है और मादा कुत्ता से वो आकर्षित हो जाता है, एक पुरुष भी अगर इतनी से आकर्षित हो जाए, उस कुत्ते और पुरुष में क्या अंतर हुआ। जब चैतन्य महाप्रभु गया से वापिस आ रहे थे अपने पिताजी का श्राद्ध करके, तो हमने एक नर मादा और नर हिरण और मादा हिरण को मैथुन में लग्न देखा, तो बोला अरे ये सुख तो निम्न योनियों में भी मिल जाता है, मनुष्य जीवन इसके लिए थोड़ी मिला है। सुख केंद्र के हम देखते हम देह योग दही नाम, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ये तो हर योनि में प्राप्त हो जाता है, हर योनि में हम देख सकते हैं। कबूतर होता है वो कुछ आवाजें करते हैं तो मादा कबूतर को आकर्षित करता है, फिर दोनों मैथुन करते हैं बच्चे पैदा करते हैं। चिड़िया होती है अपने मादा चिड़िया को आकर्षित करती है, कुछ आवाजें करते हैं मैथुन करते हैं बच्चे पैदा करते हैं, अंडे देते हैं बच्चे पैदा हो जाते हैं। हर जगह यही हो रहा है, कोई नई बात थोड़ी है। हम सोचते हैं बड़ी अचीवमेंट होगी, कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। और सर क्या है, फिर जब मैथुन करते हैं काम वासनाओं से वशीभूत होकर, फिर क्या होता है, उनकी उपज क्या है, हम जैसे कामुक बच्चे, वी ऑल आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ लस्ट ओनली। बस कामुक बच्चे पैदा हुए, वो भी काम वासनाओं से वशीभूत बच्चे, वो भी आगे काम वासनाओं को बढ़ाते हैं, बस ये समाज चल रहा है। सब कलो शूद्र संभव, ये मैथुन की व्यवस्था भगवान ने दी है कृष्णा भाना भावित बच्चों की उत्पत्ति के लिए। तो आज भारत की कितनी आबादी है, लगभग 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब से भी ज्यादा है। तो 1 अरब से भी ज्यादा ये बच्चे पैदा हुए हैं, ये कोई ऐसा तो है नहीं तपस्या से या पूजा से उत्पन्न हो गए, ये सब काम से उत्पन्न हुए हैं और आगे भविष्य देख सकते हैं कितना उज्ज्वल है, क्योंकि काम सब किसी को ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानता में कितनी बड़ी अज्ञानता है। ये देहात्म बुद्धि आप सोचने का प्रयास कीजिए कितनी बड़ी अज्ञानता है, और किसी स्कूल कॉलेज में कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्रयास नहीं किया जा रहा कि इस देहात्म बुद्धि को काटा जाए, बल्कि बढ़ावा दिया जाता है। इतनी बुरी हालत हो गई है कि बच्चे जब आते हैं वो साधुओं से आकर्षित होते हैं तो साधु संघ की राशनिंग की जाती है, कम थोड़ा रोको, साधु संघ की राशनिंग की जाती है कि इतना नहीं साधु संघ करना, भटक जाएगा, विरक्त हो जाएगा, विरक्त होगा तो सुखी होगा, सबका उद्धार करेगा। साधु संघ की हमें राशनिंग नहीं करनी है कि इतना नहीं करना चाहिए, भक्ति में इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, रुक रुक के सब कुछ होना नहीं, साधु संघ से ही तो देहात्म बुद्धि कटेगी नहीं, देहात्म बुद्धि बनी रहे, देहात्म बुद्धि बनी रहे। ये मत भूल जाना कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी माता हूं, ये कभी मत भूलना, चाहे कृष्ण को भूल जाना, लेकिन देहात्म बुद्धि बेटा बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे, ये हमारा आशीर्वाद है। देहात्म बुद्धि मत खोना कभी भी, कभी देहात्म बुद्धि मत खोना, ये कभी मत भूलना कि तुम मेरा पुत्र है, कभी मत भूलना इसको। ये क्या है देखिए, कितनी बड़ी अज्ञानता है कि मैं भी दुखी तुम भी दुखी, आगे मेरे सारा खानदान सब दुखी रहे, कोई समस्या नहीं। देहात्म बुद्धि अज्ञानता है, हमारे दुखों का कारण है। माता पिता पूरे समाज को बिल्कुल अग्रसर होना चाहिए, इस देहात्म बुद्धि को काटना है। हम बड़े बड़े नेता लोग आशीर्वाद उपदेश देते रहते हैं कि हम इस समाज को बहुत ही खुशहाल समाज बना देंगे, असंभव है, असंभव है, कैसे खुशहाल समाज बन जाएगा, आप देहात्म बुद्धि में फंसे पड़े हो, कैसे खुशहाल समाज बन जाएगा, हमें पहले आत्मा के स्तर पर आना पड़ेगा, इस बंधन को काटना पड़ेगा। तो केवल साधु संघ एक माध्यम है, साधु लोग हमें बताते हैं कि आप भोक्ता नहीं, आप प्रकृति हो, जीवर स्वरूप होवे नित्य कृष्ण दास, जब तक आप सेवा की भावना में नहीं आओगे आप आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, आप जितना ज्यादा भोगने का प्रयास करेंगे उतना ज्यादा आप दुख पाएंगे, सेवा करनी ही पड़ेगी, वो हमारी वास्तविक स्थिति है। एक बार शिला प्रभुपाद के पास एक शिष्य बड़े उत्साह से गया प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए, प्रभुपाद मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सब कुछ त्याग दूं, प्रभुपाद आई वॉन्ट टू रिनाउंस एवरीथिंग, सब बेकार है, आई वॉन्ट टू रिनाउंस एवरीथिंग। प्रभुपाद बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुए, प्रभुपाद ने बोला व्हाट कैन यू रिनाउंस, नथिंग बिलोंग्स टू यू, क्यों फालतू में उछल रहे हो, क्या रिनाउंस करोगे, तुम्हारा है क्या, आई वॉन्ट टू रिनाउंस, तुम्हारा है क्या भाई जो आप रिनाउंस करोगे, ये घर ये धन आपका है क्या, नहीं है, क्या त्यागोगे, त्यागता तो वह जिसका कुछ होता है, आपका कुछ है ही नहीं, क्या त्यागोगे। तो गलत फहमी मत रहिए कि हमारा घर है, ये हमारी धन है, हमारा संपत्ति है, ये मेरी बुद्धि है, मैं देखो कितना कितने स्किल्स हैं मेरे में, कितनी योग्यताएं हैं, कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है, तो हम क्या त्यागेंगे। तो हम तो केवल भगवान की सेवा के लिए बने हैं, बस मैं आत्मा हूं और मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, केवल एक चीज है, बता सकते हैं क्या, बस मेरे पास है सेवा की भावना, द अपॉर्चुनिटी टू सर्व, सेवा का अवसर, उससे मैं कभी नहीं खोऊंगा। हम लोग उसको खोकर बाकी सब कुछ प्रयास करते हैं पाने का, सेवा के अवसर को खो देते हैं, सेवा नहीं करेंगे, भगवान की सेवा के अवसर को खोकर जो हमारे पास नहीं होगा और कभी हो भी नहीं सकता उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी रेस में लगे हुए हैं जिसमें कभी भी हमें लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो यह हुआ पुंसा स्त्रीय मैथुनम भावमेतात्, आकर्षण हुआ, काम वासनाओं से वशीभूत हुए और फिर संबंध स्थापित किया, तब क्या हुआ, संबंध स्थापित करते ही तयो मिथो हृदय ग्रंथम आहु, जो हृदय में ग्रंथियां थी और पक्की हो गए, अब तो पक्का हो गया, अब तो ये मेरी पत्नी है ना, अब मुझे क्या चाहिए, अब विस्तार होगा, अब जरूरतें बढ़ेंगी, अतः ग्रह क्षेत्र सुप्ताप्त वित्ते, अब घर चाहिए, जमीन चाहिए, कुछ पशु चाहिए, कुछ गाड़ियां चाहिए, कुछ रिश्तेदार हैं, इन सबको संभालने के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए, अब मेरे जीवन का लक्ष्य है धन कमाना, क्योंकि जब तक धन नहीं होगा मैं सुखी नहीं रह सकता, शरीर की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती, अब धन धन धन, और इसके लिए व्यक्ति पागल हो जाता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं मनी इज हनी, धन शहद की तरह मीठा लगता है। कोई कुछ मतलब नहीं, क्या पाप है क्या पुण्य है, मेरे बच्चे मेरी पत्नी प्रसन्न रहे, बस यही भक्ति है, यही धर्म है। धन अर्जन करना ही धर्म है। जितना ज्यादा कोई धन अर्जन कर लेगा वो सफल व्यक्ति है, फंसता जाता है व्यक्ति, फंसता जाता है। और जितना ज्यादा हम धन अर्जन करते हैं उतने ज्यादा उससे आसक्त हो जाते हैं, और जितना धन अर्जन करते हैं उतने ज्यादा उस पर निर्भर हो जाते हैं। हमारा जीवन इतना ज्यादा बद्ध हो जाता है, इतना ज्यादा कंडीशन हो जाता है कि बिना गाड़ी के बिना एयर कंडीशनर के हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी आवश्यकताएं बन जाती हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जब गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो उसमें एक वकील थे जो कि अंग्रेजी सरकार के साथ थे, और उनको सारी सारी सुविधाएं मिल रही थी, बहुत तनख्वाह मिलती थी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ तो उन पर प्रेशर पड़ा समाज का कि छोड़ो छोड़ो सब त्यागो, तो उनको भी नौकरी छोड़नी पड़ी और एक साधारण नौकरी स्वीकार करनी पड़ी जिसमें उनको इतना धन प्राप्त नहीं होता था, बड़ी साधारण अवस्था आ गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने साधारण नौकरी प्राप्त की वो डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि उनको आदत पड़ गई थी इतने यश की इतनी सहूलियतों की, वो दुखी हो गए एकदम, और एक महीने के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। तो जो लोग बेचारे हम देखते हैं, आप बंबई में जाइए कितनी गंदे गंदी झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, कचड़े में गटर में रह रहे हैं लोग, है ना, तो वो भी तो रह रहे हैं, और बड़े बड़े महलों में भी लोग रह रहे हैं। तो जो गटर में व्यक्ति रहे वो भी तो रह रहे हैं ना, कहीं कहीं सारे लोग उसका परिवार चल रहा है वहां पे, दादा दादी पोते सब हैं वहां पे, रह रहे हैं कहीं कहीं सालों से। तो वहां पे कोई जीव रह सकता है तो महलों में भी रह सकता है, महलों वाला व्यक्ति भी वहां रह सकता है। लेकिन हम लोग इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं जो हमें सुविधाएं प्राप्त होती हैं कि हम जब सुविधाएं छीन ली जाती हैं हमसे तो हम सोचते हैं कि हमारा जीवन समाप्त हो गया। प्रभाव उदाहरण देते हैं, इसके साथ ही हम देखते हैं षड गोस्वामियों को, रघुनाथ दास गोस्वामी जिनके पिता मजूमदार थे, 20 लाख सोने के सिक्के की आय थी 500 वर्ष पूर्व, 20 लाख सोने के सिक्के इतना कमाते थे, राजकुमार थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत धन था इनके पास, लेकिन त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत्, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग कर बहुत तुच्छ होकर भगवान की भक्ति में जुड़ गए। उनको डिप्रेशन नहीं हुआ, उनको क्या हुआ, गोपी भाव रसा मृतब दिलहरी तल्लो न मगनुम हो, उनको गोपियों का प्रेम प्राप्त हुआ, उसमें वो डूब गए। तो ये है भक्तों की स्थिति, भक्त लोग किसी चीज से आसक्त नहीं होते, वो जानते हैं सब कुछ कृष्ण का है। तो जब हुआ कि मैं और मेरी पत्नी मेरे बच्चे, फिर इसके लिए हम धन कमाते हैं, और फिर धन कमाने के चक्कर में हम जुड़ते हैं तरह तरह के पाप करते हैं, और फिर भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती, फिर ये मोह बढ़ता रहता है कि मैं और मेरा, मैं और मेरा, तो फिर ऐसा व्यक्ति और दुखी हो जाता है। फिर वो सोचते हैं शायद इस पृथ्वी में सुख नहीं है, अगर मैं स्वर्ग लोकों में चला जाऊंगा तो सुख प्राप्त होगा। लेकिन अदृष्ट अपि दृष्टवत्, जो दुख यहां पे है वो स्वर्ग लोकों में भी यही है, वहां पे भी द्वेष है, भय है, लड़ाई है, झगड़े हैं। इंद्र की कहानी हम सब जानते हैं, इंद्र कितनी बड़ी भ्रमित हो गए, भगवान उनके मालिक हैं लेकिन क्रोध में आकर द्वेष में आकर इंद्र ये भूल जाते हैं, और भगवान से कई बार लड़ाई ले चुके हैं, फिर बाद में पछताते हैं, क्षमा मांगते हैं, फिर लड़ाई करते हैं। तो स्वर्ग लोकों की भी यही स्थिति है। तो जीव भटक रहा है, कई लोकों में भटक रहा है इस आनंद की खोज में, क्योंकि वो भूला हुआ है कि मैं कौन हूं। तो कैसे ऐसे मूर्ख मोटी बुद्धि वाले जीव को आनंद मिलेगा, कैसे वो छुटकारा प्राप्त कर लेगा? तो प्रभु जी फिर पर्दाफाश करते हैं कैसे। तो 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 21वां श्लोक है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमा शाब्दे परे च निष्णातम ब्राह्मणे उपशमाशमम। अतएव जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता है, वास्तव में इस देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहते हैं और भगवान के धाम जाना चाहते हैं, जिज्ञासु श्रेय उत्तमा, श्रेयस में रुचि रखते हैं, प्रेयस में नहीं, प्रेयस का अर्थ है इंद्र तृप्ति, श्रेयस का अर्थ है हमारा वास्तविक श्रेय, वास्तविक लाभ, अगर उसमें हम रुचि रखते हैं तो क्या उसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब हमारा जीवन शुरू होता है। ये हमारे वास्तविक जीवन की शुरुआत है, जब गुरु की शरण में आएंगे, प्रमाणी गुरु की शरण में, उनसे दीक्षा लेंगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तब जाके हम इस भौतिक जंजाल से छुटकारा पा पाएंगे। जैसे कि राजा प्राचीन परिषद ने नारद मुनि के संपर्क में आकर पाया। लेकिन अब में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो दीक्षा प्राप्त कर ली है, लेकिन हमारी तो देहात्म बुद्धि समाप्त नहीं हो रही है, तो क्या चक्कर है? तो राजा प्रबुद्ध सॉरी जो प्रबुद्ध जी हैं वो निमित राजा मिनी को निमि को बता रहे इससे आगे कि शरण ग्रहण करने का क्या अर्थ है, यानी कि वो उसके आगे बता रहे हैं कि शिष्य के क्या कर्तव्य हैं, शिष्य को कैसे होना चाहिए, कैसे राजा प्राचीन भरिषद मार नारद मुनि के संपर्क में आए तो उनमें क्या योग्यता थी, बता सकते हैं राजा प्राचीन भरी की क्या योग्यताएं थी? राजा प्राचीन भरिषद ने नारद मुनि जो कहा तुरंत ग्रहण किया, उनको नारद मुनि पे पूरा फेथ था, श्रद्धा थी, तो उन्होंने जो भी श्रवण किया एक लाती है फेथफुल हियरिंग, बहुत ध्यान पूर्वक सुना है ना, और बहुत श्रद्धा के साथ सुना कि जो भी सुना हाँ ये मेरे जीवन को बदल देगा, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, उनके कोई चरित्र में उनको कोई नहीं था कि ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो शिष्य को गुरु को कैसे लेना चाहिए? प्रमाणिक गुरु को प्राण तथा आराध्य देव मानते हुए शिष्य को चाहिए कि उससे शुद्ध भक्ति की विधि सीखे। गुरु को वर्शिपेबल डीटी मानना चाहिए, वर्शिपेबल कि हमारे ये आराध्य देव हैं, और फिर शिष्य को अपने गुरु से द्वैत रहित होकर भगवान की श्रद्धा पूर्ण और उपयुक्त विधि से सेवा करना सीखना चाहिए, जिससे वह तुष्ट होकर श्रद्धालु शिष्य को अपने आप को अर्पित कर सके। शुद्ध भक्त के हृदय से आलादनी शक्ति अपने शिष्यों के हृदय में प्रवेश करती है, ये राधा रानी की कृपा से ही संभव है। तो यहां श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बात कहते हैं कि शुद्ध भक्त अपने आप को पूर्ण रूप से दे देता है, जब शुद्ध भक्त अपने आप को पूर्ण रूप से अपने शिष्य को दे देता है तो शिष्य में इतनी योग्यता आ जाती है कि वो साक्षात श्री कृष्ण को देखते हैं, साक्षात श्री कृष्ण को देख सकते हैं, उनको स्पर्श कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। भक्तों में इतनी शक्ति है। और फिर शिष्यों को सीखना चाहिए, आगे बता रहे हैं, निष्ठावान शिष्य को चाहिए कि मन को प्रत्येक भौतिक वस्तु से विलग रखना सीखे। जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक आसक्तियां, उससे अपने आप को अलग रखना सीखें। हम लोग दोनों नावों में पांव रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कृष्ण भी चाहिए और माया भी चाहिए, दोनों चाहिए, भौतिक सुख भी चाहिए और आध्यात्मिक सुख भी चाहिए, ये संभव नहीं है। जब तक ये भौतिक सुख की इच्छा ही हमारे दुख का कारण है, भक्ति करते हुए अगर हम आनंद में नहीं हैं तो उसका कारण एक ही है कि हमारे अंदर की भौतिक इच्छाएं, बस और कोई कारण हो ही नहीं सकता। तो इसको अपने आप मन को इससे अलग करना पड़ेगा। हमारी जो इच्छा है आहार निद्रा भय मैथुन में आनंद ढूंढना, इससे अपने आप को अलग करना पड़ेगा। ये बहुत ही निम्न कोटि के आनंद है, आहार खाने का आनंद कुछ नहीं है, हमें उतना ही खाना चाहिए जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बस निद्रा उतना ही, स्वयं शरीर स्वस्थ रहे, भय बचाव, बचाव करके हमें बहुत आनंद आता है। कैसे बचाव से आनंद की प्राप्ति करते हैं बता सकते हैं? हाँ, बचाव करके हमें आनंद आता है, जैसे निंदा करके, अपने आप को अच्छा दिखा के दूसरे को बुरा दिखा के, कि मेरी स्थिति बनी रहे, सुरक्षा, डिफेंडिंग प्रोपेंसिटी। निंदा करके, थोड़ा सा तिकड़मबाजी करके, मैनिपुलेशन करके, है ना, थोड़ा सा दोगलापन करके अपने आप को बचाओ, मेरी स्थिति बनी रहे, जो मेरी इमेज है उसमें कोई वो ना है, मैं बना रहा हूं, बचाओ, इसमें हमें आनंद मिलता है। तो ये पार्श्विक प्रवृत्ति है, ये कोई मनुष्य के लक्षण नहीं है, इसमें आनंद ढूंढना। तो आहार निद्रा भय मैथुन, इसमें जब तक हम आनंद ढूंढते रहेंगे तो हम अगर दीक्षा भी प्राप्त कर लेंगे तो कोई हमें हमारी देहात्म बुद्धि कटेगी नहीं। ये शिष्य का कर्तव्य है, गुरु तो ज्ञान दे रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से, हमें प्रयास करना पड़ेगा, मन को इससे विलग करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। मन की स्वाभाविक स्थिति है इनकी तरफ भागेगा, लेकिन हमें मन को नियंत्रण करने का प्रयास करना पड़ेगा। हमेशा अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं हमेशा प्रतिक्षण हमें स्मरण करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। तो प्रत्येक हमारा विचार, हमारी प्रत्येक इच्छा, हमारा प्रत्येक वचन, हमारा प्रत्येक कार्य सेवा की भावना में होना चाहिए। अगर हमारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक वचन, प्रत्येक इच्छा सेवा की भावना में नहीं है, उतने ही ज्यादा हम इस भौतिक जगत में फंस जाएंगे, क्योंकि उस समय हम अपने आप को सेवक नहीं मान रहे तो भोक्ता मान रहे हैं, भोक्ता मान रहे हैं तो इस संसार में हम फंस जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करनी है। श्रवण करके हम चले गए, लेकिन उसके बाद अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करना है। यहां हम भागवत श्रवण करने आते हैं इस्कॉन सेंटर्स में एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, यहां पे सारी बात स्पष्ट स्पष्ट बताई जाती है। यहां कोई मधुर तरीके से संगीत में भागवत कथा नहीं होती कि सितार भी बज रहे हैं, तबला भी बज रहा है, फिर गा गा के भागवतम सुनाई जा रही है बड़ी मधुर तरीके से। ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए हम नहीं बैठे यहां पे, यहां पे स्पष्ट स्पष्ट बात की जा रही है। नारद मुनि देखिए कितने तीखे तीखे वचन बताए, पीछे के श्लोक आपने सुने होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट स्पष्ट बातें, क्योंकि तभी हृदय में क्रांति आएगी। समय बहुत कम है, ये घुमा फिरा के बातें करने का समय नहीं है, सीधी बात स्पष्ट बात बतानी चाहिए। तो साफ साफ हमें बात बताई जा रही है सब कुछ, अब इसको अपने जीवन में उतारना है। ये केवल सुनने के लिए चलो जी बहुत बढ़िया बहुत अच्छा चलो जी कपड़े अगली बारी फिर आएंगे, आते जा रहे हैं सालों सालों बीतते गए, बिल्कुल कथा अंदर प्रवेश नहीं कर रहे। मैं हूं जो हूं वही रहूंगा, मैं नहीं बदलूंगा, जो मेरे विचार है जो मेरी मानसिकता उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान का अर्थ है सारे तरह के मनोधर्म छोड़ दो, सारे तरह के अपने विचार त्याग दो, अपनी मानसिकताएं अपने मत को त्याग दो, मेरा ओपिनियन मैं ऐसे करता हूं मेरी आदतें ये वो सब त्यागो, माम एकम केवल मेरी शरण में आओ, अपने अनर्थों में इतना लगाव मत रखो, अपनी पुरानी आदतों बुरी आदतों में इतने आसक्त ना हो जाओ, छोड़ो त्यागो। भक्तों के संग में बहुत शक्ति है, शास्त्र इसलिए बनाए गए हैं, व्यास देव जी ने भागवतम की रचना हमारे हृदय में क्रांति लाने के लिए की है, जन साधारण का उद्धार करने के लिए की है। तो इसलिए भागवतम ग्रंथ है, इसलिए प्रभुपाद जी ने इनको ट्रांसलेट किया है रात रात भर जागकर, इसलिए प्रभुपाद वृद्ध अवस्था में भारत छोड़कर अमेरिका गए हैं इस अज्ञानता को दूर करने के लिए। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है, इसमें फंसे नहीं रहना। वे मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है बहुत, और इसमें हमें भक्ति 5 वर्ष की आयु से ही कर देनी चाहिए थी। ऑलरेडी वी आर वेरी वेरी लेट, बहुत लेट हो चुके हैं। तो अब शुभ से शीघ्रम, अब नहीं रुकावट कोई होनी चाहिए, अब व्यवसात्मिका बुद्धि होकर लग जाना चाहिए। ये साइंस है, ये विज्ञान है, पूरी दृढ़ता से लगेंगे परिणाम अवश्य मिलेगा और फिर हम असली आनंद को प्राप्त करेंगे। तो बता रहे हैं निष्ठावान शिष्य को मन को प्रत्येक भौतिक वस्तु से, प्रत्येक भौतिक वस्तु से, यानी नहीं ये तुम्हें बहुत अच्छी लगती है बाकी तो ठीक है, ये मेरी कमजोरी है, इसको तो बना के रखूंगा मैं, इसको रखूंगा, बाकी मेरा हर इंद्रियों पे कंट्रोल है जी, मैं टीवी नहीं देखता, मैं ये नहीं करता वो नहीं करता, ये छोटी सी भौतिक आ सकती है, किसी को हानि तो नहीं पहुंचा रहा प्रभु किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा, किसी का बुरा तो नहीं कर रहा, अपने आप को हानि पहुंचा रही और कुछ नहीं कर रहा। छोटी सी भौतिक इच्छा भी हमने कहा कहीं कहीं सालों बनाए रखे, कहीं जन्मों जन्मों तक बना रखे, वो बहुत भारी पड़ जाएगी। ये छोटी सी, कितना वजन होगा? 10 ग्राम। अरे 10 ग्राम छोटी सी इच्छा है, एक छोटा सा बिस्किट खाने की इच्छा, बिस्किट बड़े अच्छे लगते हैं, बस क्या है, प्रेम से भगवान को भोग लगाया पा लिया बिस्किट, क्या फर्क पड़ता है, छोटी सी इच्छा है ठीक है। अब मैं छोटे से इसको लेकर खड़ा रही हूं, शुरू में कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा, कितनी देर तक खड़ा रहूंगा, ऐसे थकेगा नहीं थकेगा हाथ, है ना, हल्का सा ही तो है, नहीं ज्यादा देर तक खड़े रहा तो ये हल्का सा बहुत भारी पड़ जाएगा। इसी ढंग से थोड़ी सी भौतिक इच्छा उसको बनाए रखा हृदय के कोने में, कोई बात नहीं, अब बाकी सब कुछ तो चला ही गया ना, ये भी छोड़ दिया ये भी छोड़ दिया ये भी छोड़ दूं, ये तो रखूं थोड़ा सा, धीरे धीरे ठीक हो जाए, बनाए रखो भौतिक आसक्ति, ये मेरी है, ये पर्सनल लाइफ थोड़ा रहने दो, इतना तो रहने दो, तो क्या होगा, ये बनी रहेगी चलती रहेगी चलता ही रहेगा और बहुत भारी पड़ जाएगी और इस भौतिक जंगल से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। प्रत्येक भौतिक वस्तु से विलग रखना सीखें एवं अपने और अन्य साधु भक्तों की संगति का अनुशीलन करें। कैसे भक्तों का संग करें, एक ही श्लोक में बताया गया है, उसे अपने से निम्न पद वालों के प्रति दयालु होना चाहिए, जो जूनियर्स हैं उनके प्रति दयालु,
समान पद वालों के साथ मैत्री, अपने से उच्चतर आध्यात्मिक पद पर उनसे विनीत भाव से सेवा करनी चाहिए। जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी विनीत भाव से सेवा, जो हमारे बराबर के हैं उनसे मैत्री भाव, जो हमारे से जूनियर्स हैं उन पे दया का भाव। इस तरह उसे समस्त जीवों के साथ उचित व्यवहार करना सीखना चाहिए। समस्त जीवों के साथ, जो भक्ति में हैं या नहीं है, समस्त जीवों के साथ क्या एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हमें सीखना चाहिए। हमें नहीं आता क्योंकि देहात्म बुद्धि में होने के कारण हम स्वार्थी हो जाते हैं। जो मेरे शरीर और जो मेरे परिवार के लिए लाभदायक है वही ठीक है, बाकी गए कोई लेना देना नहीं है। तो समस्त जीवों के साथ उचित व्यवहार करना सीखना चाहिए, तब जाके हमें ये भागवतम का ज्ञान हृदय में प्रवेश करेगा। देखिए, श्रवण केवल एक घंटे की भागवतम क्लास नहीं है, या बाद में एक घंटा आपने जूट बॉक्स से सुन लिया वो भी नहीं है। भक्ति पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है, हमारे चरित्र पर निर्भर है। यह नहीं है कि एक घंटा तो आपने बड़े ध्यानपूर्वक सुन लिया, बाद में आप कुछ भी करें। दो घंटे केवल माला नहीं हो सकती ध्यानपूर्वक, दो घंटे माला ध्यानपूर्वक तभी होगी जब बाद के असली 22 घंटे आपने ध्यानपूर्वक बिताए हों। इसी ढंग से एक घंटे का श्रवण हमारे कर्मों के द्वारा कृष्ण तभी प्रवेश करेंगे जब बाकी के 22-23 घंटे हम बड़े ध्यानपूर्वक सचेत अवस्था में रहे हों, सही चेतना में रहे हों, तब जाके ये भगवान कर्णों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करेंगे। ये पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है। भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, प्रकट करते हैं उस जीव के ऊपर जो सिंसियर है, जो वास्तव में भगवान को प्राप्त करना चाहता है। तो शिष्य को चाहिए निष्ठावान, निष्ठा रखे और वास्तव में मुझे भक्ति करनी है, मुझे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना है। अभी मेरी स्थिति हो सकता है बहुत खराब है, बहुत तरह तरह की कामों की वासनाएं अंदर भरी पड़ी हैं, लेकिन मैं जान गया कि ये मेरे सारे दुखों का कारण है, अब मुझे इससे निकलना है बाहर। तो ये डिजायर होनी चाहिए और हमें हमेशा इसी प्रयास में लगे रहना चाहिए, तब हमारा जप भी अच्छा होगा, तब हमारा श्रवण भी अच्छा होगा। अन्यथा ये सब एक रिचुअल की तरह चलता रहेगा कि दो घंटे जप किया, एक घंटा श्रवण किया, उसके बाद जो मर्जी करो, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे कि समस्त जीवों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ध्यान ही नहीं दे रहे कि भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ध्यान ही नहीं दे रहे कि मेरी आहार निद्रा भय मैथुन में कितनी रुचि है उसको कम करना है, ध्यान ही नहीं दे रहे इस बात पे। तो फिर श्रवण और एक जप हम पर असर नहीं करेगा। प्रभुपाद कहते हैं हमें जप कैसा करना चाहिए, एक रोते हुए बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा रोता है। छोटा बच्चा क्यों रोता है, क्योंकि वो डर जाता है और अपने आप को असहाय पाता है। तो हमें भी इस बौद्ध जगत में डर जाना चाहिए, इतना भयंकर है ये जगत, इतना भयानक है, इतना भयावह है, कई योनियों में मैं प्रवेश कर सकता हूं, डरना चाहिए। ऐसे ऐसे जगत में रहकर भी पदम पदम यत विपदम हम अपने को कंफर्टेबल, हाउ आर यू फाइन, अरे कैसे फाइन हो सकते हो आप, कैसे फाइन कोई हो सकता है यहां पे, कैसे पदम पदम यत विपदम, कभी भी गला कट सकता है आपका, बोले आई एम फाइन कैसे। तो इसका हमें आभास ही नहीं है कि बहुत ही कितना भयावह है, कितना डेंजरस है, और अपने आपको असहाय पाए और असहाय होकर कृपा के लिए चिल्लाएं जैसे एक छोटा बच्चा चिल्लाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हम अपने आपको असहाय नहीं पाते, क्यों नहीं पाते असहाय, क्योंकि अपने आपको कर्ता समझते हैं। कैसे कर्ता समझते हैं, कि मैं भोगता हूं, मेरे पास धन है, मेरे में समाज में परिस्थिति है, मेरे कोई पोजीशन है, कोई मैं सिक्योर व्यक्ति हूं, सब कुछ ठीक है, मैं कुछ सब कुछ कर लूंगा, तो कृपा पर निर्भर नहीं है। जब कृपा पर निर्भर नहीं है तो जब दो घंटे जप करना होता है तब अचानक थोड़ी कृपा पर निर्भर हो जाएंगे, तभी भोक्ता की भावना रहती है। जब अपने आप को भोक्ता ही समझते हैं, महामंत्र के द्वारा मांग रहे हैं सेवा, क्यों मांगू सेवा भाई, मैं कोई आपसे कम थोड़ी हूं, आप कृष्ण हैं तो मैं भी तो हूं, आप अपनी जगह मैं अपनी जगह, आप वैकुंठ के राजा मैं अपने घर का राजा, तो मुझे क्या है, बस ठीक है थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है, कर लेता हूं हरे कृष्ण महामंत्र, दैट्स ऑल, व्हाई शुड आई बेग फॉर सर्विस, कोई भावना ही नहीं है, क्यों भीख मांगू भाई सेवा की, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है सेवा मांगने की, क्यों कर रहा हूं बस ठीक है, अच्छा लगता है करना, ठीक है। तो ऐसे चल रहा है हमारी भक्ति, तो कैसे आनंद मिलेगा, अपने आपको भोक्ता समझ रहे हैं। अब दो घंटे में अचानक थोड़ी नहीं नहीं, अब आप अपने आपको विनम्र मानो, और हो ही नहीं सकता क्योंकि बाकी 22 घंटे आप भोक्ता रहते हैं, जानते नहीं जीवों के साथ कैसे व्यवहार करना है,
उत्तम अधिकारियों के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपने साथ वालों के साथ कैसे व्यवहार करना है, जूनियर्स के साथ कैसे व्यवहार करना है, वो मालूम नहीं, तो कैसे हम भीख मांग सकते हैं, कैसे कथा हमारे कर्णों में प्रवेश कर सकती है, कृपा कैसे रिलीज करेंगे भगवान। तो एक विज्ञान है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब पैसा आ गया, पोजिशन हो गया, हम सिक्योर हो गए, नहीं, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। असली सिक्योरिटी है हरि नाम में, असली सिक्योरिटी है भक्तों के संग में, बस। कहीं और हमें सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, कहीं और सुरक्षा नहीं मिल सकती। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमेशा मुख से हरि नाम निकलता रहे, हमेशा हम भक्तों के संग में रहे, देन वी आर सिक्योर। लेकिन ये इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा उपहार भगवान ऐसे फ्री में नहीं देंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अभी है, हो सकता है भविष्य में ना रहे हमारे साथ, अगर हम सावधान नहीं रहे तो। काफी भक्त आते हैं और बहुत से लोग चले जाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस में आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टिके रहना बहुत बड़ी बात है। टिके तभी रहेंगे जब हम सब सीखेंगे, हमेशा सीखने की भावना में रहेंगे। अब तो हो गया, मैं सीनियर, बहुत हो गया, नहीं, हमेशा सीखने की भावना में रहेंगे तब आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। बहुत कम लोग टिकते हैं, कारण यही होता है लोग भावुकता में आते हैं और भावुकता में ही चले जाते हैं। इसको विज्ञान के रूप में नहीं लेते, इसको साइंस के रूप में लें और सीखें, जो शास्त्रों में बताया गया उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, सुने और सीखने का प्रयास करें, फिर हम इसको आजीवन प्रयास कर सकते हैं और फिर हम धीरे 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 देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ सकते हैं। और जैसे राजा प्राचीन भरीशत का उद्धार हुआ, वैसे हमारा भी उद्धार संभव है। हरे कृष्ण। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न कर सकते हैं। प्रभु जी का प्रश्न है कि माया अटैक करती है और हम भोग त्याग करते हैं, कभी भोग करते हैं कभी त्याग करते हैं, तो ये चल ही रहा है, हम सबकी यही स्थिति है। कभी हम भोगों में फंसते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट होकर त्याग देते हैं, फिर भोग करते हैं, फिर त्याग देते हैं, है ना। तो अगर सही ढंग से भक्तों का संग करेंगे तो इससे उठ पाएंगे ऊपर, ना हम भोग कर सकते हैं ना हम त्याग कर सकते हैं, है ना। हमारी वास्तविक स्थिति है सेवा करने की, तो भक्तों के संग में रहेंगे तो फिर हम सेवा में लगेंगे, तो अपने संग को बढ़ाना चाहिए। माता जी कह रही हैं कि इन्होंने रुद्र हृदय उपनिषद पढ़ा है जिसमें शिव जी को परम पुरुषोत्तम भगवान बताया गया है, कहीं वेदों में भगवान श्री कृष्ण की स्पष्ट चर्चा नहीं है, तो कैसे समझा जाए। तो देखिए, ज्ञान का अर्जन हमें करना चाहिए गुरु के संरक्षण में रहकर, है ना। इंडिपेंडेंट रहना भक्ति के लिए सबसे बड़ा हानिकारक है। 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, पढ़िए आप और भक्ति से हाथ धो लीजिए। ऐसे नहीं, ये कोई इंटेलेक्चुअल हमें रेस नहीं कर रहे कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, ऐसे नहीं। गुरु के संरक्षण में रहकर सब कुछ पढ़ना चाहिए, गुरु के माध्यम से हमें शास्त्रों को समझना है, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन बहुत से वेदों में आया है, बहुत से उपनिषदों में आया है, गोपाल तापनी उपनिषद है, ऋग्वेद के अंदर ही कई जगह भगवान श्री कृष्ण का वर्णन आया है। प्रभुपाद जी ने 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में के तात्पर्य में, जैसे भगवान करें आम सर्वस्य प्रभु, उसमें काफी रेफरेंसेस दिए हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो हमें वो याद नहीं है सारे श्लोक और उपनिषद, लेकिन उसमें सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। और भगवान बता रहे हैं वेदेश सर्वे अहमेव विद्या, और साथ में ये बहुत गुहेतम ज्ञान है, ये कोई आसानी से मिलने वाले नहीं है। भगवान श्री कृष्ण वेदों में कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, उपासना कांड में भक्ति योग है, जो कि बहुत गहराई में बहुत ही छुपा हुआ ज्ञान है, और ये केवल भक्ति से ही रिवील होता है। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तों, वेदों के माध्यम से अगर भगवान को खोजेंगे नहीं मिलेंगे, कृष्ण छुपे ही रहेंगे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, छुपे हुए हैं। अदुर्लभम आत्म भक्तों, ठीक है ना। तो कृपया करके इस ज्ञान की खोज को छोड़िए, इससे आपका उद्धार नहीं होगा, आपकी श्रद्धा कमजोर होगी। और ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप अंधविश्वास करें, नहीं, ये अंधविश्वास की बात नहीं की जा रही, लेकिन आपकी परिस्थिति को देखते हुए कि आपके लिए कौन सा शास्त्र उपयुक्त है वो आपको गुरु बताएंगे, और उनको गुरु के संरक्षण में रहते हुए अध्ययन करना चाहिए। इंडिपेंडेंट रीडिंग से काम नहीं चलेगा, ठीक है। हम सीखे कि कैसे व्यवहार करना है। नहीं, आपको लगता है ठीक रहती है, ऐसा नहीं। कुछ अज्यूम मत कीजिए कि सीनियर्स के साथ ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है इस समय हमारा, उसको सीखना है। सीनियर्स के साथ कैसे, इक्वल्स के साथ कैसे और जूनियर्स के साथ कैसे, सीख के हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो चलेगा, ठीक है। आई थिंक समय हो गया, बाद में फिर हम कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंद है।